जय धवला, पुस्तक 11वी, लेक्चर नंबर 10।
ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊनं, वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगं तसं सिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा मोक्षं वेदगमहायारमं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है, जो कषाय पौर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा हेतुषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 82 पर आगे 82 उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा के प्रकरण में एक जीव की अपेक्षा अंतर का प्रकरण यहाँ चल रहा है, और उसमें अभी हम जघन्य अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल देख रहे थे। वहाँ बताया था किसी का होता है अंतर, किसी का नहीं होता। किसका नहीं होता? कि क्षपणा में जिन प्रकृतियों की, यानी क्षपणा के काल में जिनका जघन्य होता है, उनका अंतर नहीं होता। ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं कि जिनका जघन्य क्षपणा में होता है?
चार संज्वलन,
हाँ, संज्वलन चार,
पुरुष वेद, स्त्री वेद,
तीनों वेद और हास्यादि छह नौ कषाय जो अपूर्व करण के अंत में होते हैं, और दर्शन मोह की क्षपणा में सम्यक प्रकृति की होती है। मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है?
सम्यक्त्व के सन्मुख,
सम्यक्त्व के सन्मुख। ये अंतर के द्वारा ये बात ख्याल में आती है कि वो वेदक समय दृष्टि लेना है, क्योंकि उसका अंतर एक अंतर्मूर्त बताया है ओम की अपेक्षा, और आदेश में कहेंगे वो पल्ले का असंख्यात अभाव, यानी देव और नारकी में वहाँ तो
पल्ले का असंख्यात
प्रथम सम्यक्त्व में लेना, वो बात करेंगे अभी हम। ये अंतर से ये बात ख्याल आया कि ओघ से मिथ्यात्व के जघन्य का जघन्य अंतर कितना होता है, तो कहा अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त में फिर मिथ्यात्व में जावे और फिर वो संयम के प्रति, यानी संयम प्राप्त करे, तो उसका अर्थ क्या है? अंतर्मूर्त के द्वारा फिर उसका वेदक वेदक ही हो सकता है ना इतने जल्दी। और आदेश में पल्ले का असंख्या का भाग बताएंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं, उसको याद करेंगे तभी। फिर तो मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है? तो पहले गुणस्थान से संयम प्राप्त करने वाले के पहले गुणस्थान के अंत में होते, अनुभाग की उदीर्णा की बात चल रही है। सम्यक मिथ्यात्व का कब होता है?
सम्यक्त्व के सन्मुख,
तीसरे से चौथे में जाने वाले के उसके अंत समय, अंत समय जब होता है तो उसका अंतर का प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त बीच में चला जाएगा, दोबारा सम्यक्त्व से तीसरे में आए और फिर वो चढ़े
अंतर्मूर्त,
उसके लिए एक अंतर्मूर्त चला जाए।
इसी जो यार जगन होता है तुमने लिया, हाँ, क्यों होता है? कि उसका भाव उसके शुद्ध है, क्या वो उद्रेला कम होगी?
ना उसके, हाँ, विशुद्धि भाव है ना, इन्हें
विशुद्धि भाव है
तो उसके अनुभाग कम होकर उदय में आता है,
कम होके उदय में आता
है। सत्ता की बात नहीं है, सत्ता में भले पड़ा रहेगा, जैसे हमने देखा था सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का जो थ्रू आउट सत्ता का अनुभाग तो उत्कृष्ट ही रहता है। सत्ता में वो कब कम होता है? जब जाके दर्शन मोनि की क्षपणा होती है तभी वो कम होता है, तभी अनुत्कृष्ट होता है सत्ता की अपेक्षा, यानी विसंयोजना के काल में भी वो सत्ता का अनुभाग कम नहीं होता, परंतु सम्यक प्रकृति का अनुभाग जो है उदय रूप जो है, यानी उदीर्ण होकर जो उदय हो रहा है, कभी उत्कृष्ट भी होगा कभी अनुत्कृष्ट भी होगा। कब होगा? सम्यक दृष्टि ही है थ्रू आउट, सम्यक प्रकृति का उदय थ्रू आउट चल रहा है, जब जब वो अधिक विशुद्ध परिणाम में आएगा क्योंकि उसके परिणामों में भी चेंजेस होते हैं ना, कभी संकलेश भी हो जाएंगे, कभी चौथे गुणस्थान वाला कोई है तो छह लेशाएं है वहां पर, तो वहां संकलेश विशुद्धि के परिणाम भी बदलते रहते हैं। तो जब उसके विशुद्ध परिणाम है तब उसके सम्यक प्रकृति का अनुभाग अत्यंत हीन होकर उदय में आता है, तो वहां कहेंगे जगन उसकी अनुत्कृष्ट अनुभाग होगी। उत्कृष्ट कब होगा? जब उसके संकलेश हो गए तब उत्कृष्ट होगा। सत्ता में भले वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, सत्ता का अनुभाग यानी सत्ता में जो कोई उत्कृष्ट स्पर्धक है वहां पर, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही। यह किस रूप में उदय में आ रहा है? उत्कृष्ट अनुभाग रूप से क्या अनुत्कृष्ट से, उसकी चर्चा है।
नहीं, ये
मिथ्यात्व का जघन्य संयम प्राप्त करने के सम्मुख हाँ जहाँ जाए बरोबर
जाने में उसका हुआ। लेकिन अपन ये तो भाग्य कर्म है, लेकिन अपन ये भी तो बड़ा कि जैसे कि शुद्धि होती है तो केवल प्रशस्त प्रकृतियों का ही अनुभव प्राप्त होता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्राप्त नहीं होता।
नहीं नहीं उल्टा बोल,
अप्रशस्त का
अप्रशस्त का होता है, प्रशस्त का बढ़ता है।
अप्रशस्त का ही होता है, प्रशस्त का नहीं होता,
बढ़ता है उसका, उसका बढ़ता है, प्रशस्त का बढ़ता है।
अच्छा बढ़ता है, तो अभी यहाँ पर ये तो भाग्य कर्म है, अप्रशस्त
सभी प्रशस्त ही है।
अगर हम प्रशस्त प्रकृति ले तो क्या होगा? ये यहाँ पर मतलब वो महाधवला का महामंत्र का विषय हो गया वो।
ये तो हमने उसमें भी देखा था ना, अनुभाग विभक्ति जैसी कही थी वैसे संक्रमण के प्रकरण में, या मात्र उदीर्णा का प्रकरण जो था दवला में, एक पुस्तक को मात्र उदीर्णा पर है तो उसमें सभी कर्मों की उदीर्णा ली है वहाँ पर, यानी शुभ प्रकृतियों की भी बात की है वहाँ पर। तो कहाँ शुभ प्रकृतियों का भी अनुभाग कहाँ बढ़ेगा? जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि होगी वहाँ बढ़ेगा, क्योंकि उसकी उदीर्णा मात्र पहले में ही नहीं, उसकी उदीर्णा तो ऊपर के गुणस्थानों में भी है। यहाँ तो हमें उदय की विच्छेद की भी उसको भी सोचना है ना, जहाँ उदय ही नहीं वहाँ उदीर्णा भी नहीं होगी। एक तो सत्ता की बात अलग है और उदय उदीर्णा की बात अलग है। अब शुभ प्रकृतियों में अन्य प्रकृति, यहाँ तो मात्र मोहनीय का विषय अपना जयधोला में, अन्य प्रकृतियों में जो शुभ प्रकृतियां हैं उसका अनुभाग तो बढ़ेगा, बंध भी अनुभाग बंध भी बढ़कर बंद होगा और सत्ता का अनुभाग भी संक्रमित होकर वो अधिक होगा। क्योंकि हमने देखा ना जहाँ जहाँ करण परिणाम होते हैं, अनंत गुणा विशुद्धि होती है, तो अनुभाग जो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता है प्रति समय। मगर वो विषय यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो मात्र मोहनीय का है।
लेकिन ये जो रूल है कि जो जहाँ उदय वहीं उदीर्णा होगी,
हाँ
तेरह तक लगेगा, चौदह तो नहीं लगेगा, चौदह उदय उदीर्णा नहीं है,
उसकी उदीर्णा की विच्छेद होती है तेरहवे में, तेरहवे में उदीर्णा की भी विच्छेद होती है। हर एक उदीर्णा की विच्छेद कहाँ होती है देखे हमने, वेदिनी की उदीर्णा की विच्छेद कहाँ होती है? छठे गुणस्थान में होती है, साता असाता दोनों की होती है। उदय है वहाँ पर, उदीर्णा नहीं, आयु और वेदनीय
छठे गुणस्थान,
छठे गुणस्थान में उदीर्णा की विच्छेद है।
और आयु तीन
करके और बाकी जो है आयु की कहाँ होती है? तो मरण के एक आवली पहले तक उदीर्णा होती है, थ्रू आउट होती रहती है, जन्म के समय से लेकर यानी भव के प्रथम समय से लेकर आयु की उदीर्णा चल रही है। कब तक? भव यानी आयु जो शेष है, शेष आयु एक आवली बाकी है, उदीर्णा रुक जाती है। उदीर्णा का अर्थ वहां तो स्थिति की उदीर्णा की बात चल रही है, ऊपर के जो निषेक है वो फिर जाते उसको, वहां तो स्थिति की अपेक्षा बात। आयु में भी अनुभाग की उदय उदीर्णा वगैरह चलेगी, अभी वो तो विषय अलग है पूरा, अपना यहाँ का विषय भी नहीं है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देखो यानी कौन सा कहाँ होता है? ये किसी की जघन्य का अंतर नहीं है का अर्थ, जघन्य अंत के समय होगा तो उसका अंतर कैसे होगा? क्योंकि वो तो नष्ट ही हो जाएगी। परंतु अजघन्य का अंतर हो सकता है, उसके लिए जघन्य होने की आवश्यकता नहीं है। अजघन्य से अनुदीरक हो गया और फिर उदीरक हुआ तो अजघन्य रहा, ये तो कहाँ हो सकता है, मिथ्यात्व में हो सकता है, सम्यक प्रकृति में हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में हो सकता है,
श्रेणी में तो सब
अजगण्य तो सभी में होगा ना, संज्वलन में सभी में भी होगा, सभी हाँ उपशम श्रेणी में भी होगा, वो अजगण्य का अजगण्य ही रहा थ्रू आउट, और अजगण्य से अनुदीरक हुआ और फिर वह बाद में उदीरक हुआ, सभी का होगा, बिल्कुल, यानी अजगण्य का तो अंतर्घटित होगा, परंतु जघन्य का किसी में होगा किसी का नहीं होगा, किसी के होगा में किसको किसको लेना, मिथ्यात्व का अंतर होगा क्योंकि वो दोबारा संयम प्राप्त करेगा तभी उसका अंतर्घटित होगा, सम्यक मिथ्यात्व का होगा, सम्यक प्रकृति का नहीं होगा, उसका जघन्य तो आवली और एक समय बाकी था तभी होगा, फिर उसके बाद यानी दर्शन मुनि की तीन देखी हमने, अनंतानुबंधी का जघन्य वो भी संयम के अभिमुख वाले के होता है, आठ कषायों का जघन्य
पूर्वकरण नहीं आठ कषाय
उसमें से अप्रत्याख्यान का जो है चौथे वाला जब सातवें में जाता है तब,
और ये प्रत्याख्यान
का पांचवें वाला सातवें में जाता है तब, तो उसका अंतर्घटित होगा।
पर यहाँ पे हमने ऐसे देखा है कि जो उदय रूप जो निषेक है वहाँ पे भी अनुभाग की बढ़ोतरी और कटौती होती है, तो ये जो उदीर्णा होती है वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम होता है, वो डिफरेंस लेना,
डिफरेंस नहीं लेना किस रूप में उदय में आ रहा है।
हाँ, पर अभी उदय में है और उसमें उदीर्णा होके ज्यादा होके उदीर्णा होगी,
नहीं वो किस रूप में उदय में जाए, जिस रूप में उदय है उस रूप में उदीर्णा भी होगी ना उसकी,
क्योंकि उदय रूप निषेक के वहाँ पे भी अनुभाग का तो उदय है,
अपना विषय किसका चल रहा है,
उदीर्णा का चल रहा है,
तो उदय भी उदय रूप निषेक में भी वैसे अनुभाग वाले परमाणु हो गए कि नहीं हो गए।
हाँ हो गए ना।
हाँ तो उसका उदय एट अ टाइम वैसा चलेगा उसका, अभी यहाँ उदय की चर्चा ही नहीं करनी, एक एक विषय एट अ टाइम हम ले लेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन कितना बढ़ेगा अपना, वैसे तो संक्रमण भी हो रहा है सत्ता में, वो अनुभाग विभक्ति में उसका भी हो रहा है, अनुभाग संक्रमण भी देखा हमने एक पुस्तक में हमने अनुभाग विभक्ति भी देखी, अभी यहाँ अनुभाग की उदीर्णा देख रहे हैं, एक एक विषय एट अ टाइम हम समझेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबकी बात एक साथ हम सोचने जाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा।
जघन्य का अंतर सम्यक के लिए होता और चार सिद्धिलिंग के लिए होता।
हाँ, जघन्य का अंतर नहीं होगा, वेदों का भी नहीं होगा,
चार सिद्धिलिंग तीन वेद
और हाथ आदि छह नौकषाय का भी नहीं होगा,
नौ नौकषाय
जो जो क्षपणा में होते हैं ना,
अपूर्व
जिनका जिनका जघन्य क्षपणा के काल में होता है,
तेरह प्रकृति तो
हाँ ये कल हमने पढ़ा था,
तेरह
चौदह हो गए, देखो किसका होता है किसका नहीं होता उसकी बात देखी थी हमने,
किन्हीं का ये 81 पुस्तक किन्हीं का नहीं होता है, 81 पुस्तक
81 में किसी का होता है किसका नहीं होता, यहाँ लिखा है 81 पेज पर 205 नंबर का वो पैराग्राफ, क्योंकि क्षपक श्रेणी में और दर्शन मुख की क्षपणा में जिनका जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ उनके अंतराभाव, अंतराभाव यानी अंतर का अभाव का नियम है, यानी उनके अंतर होता नहीं, और शेष का अंतरकाल यथा संभव है, तो हमने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का सम्यक संयम के सन्मुख वाला लिया था, उसके अंतर्मूर्त में घटित होगा, अंतर्मूर्त में दोबारा हो सकता है ना, वो वेदक सम्यक्त्व की बात है, ये बात हमने यहाँ से सिद्ध की, यहाँ लिखा ना देखो ये पढ़ो 81 पृष्ठ पर नीचे से पांचवी लाइन, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यदि उपशम सम्यक्त्व के साथ लेते तो पल्ले का असंख्यात भाग कहना पड़ता, यह अंतर्मूर्त बताया वेदक है, और उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है, वो तो समझ में आसान, उसके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अजघन्य रहा एक अंतर्मूर्त के लिए सम्यक तो प्राप्त किया फिर अजघन्य रहोगे, और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 266 सागरूपम है, यानी इतने काल तक समय दृष्टि और एक अंतर्मूर्त के लिए समय मिथ्या दृष्टि, तो 266 सागर काल तक मिथ्या तो में नहीं आया, उसका उदीर्णा नहीं हुई। 81 पेज नीचे से दूसरी लाइन, इतनी विशेषता है अनंतानुबंधी चतुष्क के अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, एक समय कैसे है, हाँ उदय पलटता है, क्रोध से मान होकर फिर वापस क्रोध में आए। इसी प्रकार आठ कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। इनके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, वही पलटने की अपेक्षा, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम एक पूर्व कोटि। आठ कषाय ने बीच वाले लिए, अप्रत्याख्यान का उदीर्णा का ही अंतर घटित करना, कैसे वो पांचवे में या छठे में चला गया, और प्रत्याख्यान का अंतर कब होगा जब वो संयम प्राप्त करेगा तब, तो उसका उत्कृष्ट संयम में रहने का, फिर वापस अंतर घटित करना है तो वापस उसको नीचे लाना है, यानी वो मरण के बाद तो अन्य भव में चला जाएगा, तो उसका तो चौथे में आएगा, उसका उदय उदीर्ण चालू हो जाएगी, तो उसके एक पूर्व कोटि में कुछ कम करना, पांचवे में या छठे में रहने का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि में कुछ कम। मनुष्य की अपेक्षा तो आठ वर्ष के बाद ग्रहण करेगा, और मान लेते मरण तक भी रहेगा, मरकर देव में जाएगा तो चौथा गुणस्थान होगा, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय फिर शुरू हो जाएगा, उदीर्णा भी शुरू हो जाएगा, इसलिए कुछ कम एक पूर्व कोटि का। ये तो हमने पढ़ा था पूरा, फिर भी देख लेते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, ये तो हमने देखा। जघन्य उसके अंत समय में होते, दोबारा उसमें आकर फिर दोबारा उत्कृष्ट उपार्ध पुद्गल बनता है। सम्यक प्रकृति के बारे में क्या है, जघन्य के अंतरकाल नहीं है, सम्यक प्रकृति का जघन्य क्षपणा में होता है, आवली और एक समय बाकी है तभी होता है। वैसे ही चार संजुलन भय जुगुप्सा के जघन्य अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल नहीं है, अजघन्य के लिए उसका अंतरकाल एक समय और अंतर्मूर्त किया। हास्य रति और रति शोक के इनके भी जघन्य का अंतर नहीं है, परंतु अजघन्य के अंतरकाल में कुछ विशेषता है, क्योंकि हमने देखा था जहां अरति शोक का उदय थ्रू आउट चलता है तेतीस सागर साधिक, तब इसका अंतर होगा, इसलिए इसको अलग से बताया, नहीं तो छहो नौ कषायों के जघन्य का अंतर नहीं है, ये तो दोनों में समान है, फिर भी उसका ग्रुप अलग करके यहाँ बताने का प्रयोजन क्या है।
अजघन्य का अंतर,
अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर अलग अलग है, हास्य रति के लिए तेतीस सागर साधिक
सागर,
और अरति शोक के लिए
छह महीने।
वैसे जो तीन वेद है उनके जघन्य का तो अंतर नहीं है, अजघन्य का अंतर कैसा करना, अंतर्मूर्त यानी उसके वेद सहित उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, अनुदीरक हुआ और फिर उदीरक हुआ तो एक अंतर्मूर्त घटित हुआ। पुरुष वेद का एक समय घटित हो सकता है, पुरुष वेद का एक समय कैसे होगा प्रेरणा, हाँ यानी वो अनुदीरक हो गया एक समय के लिए और मरा और देव में गया, तो पुरुष वेद का फिर उदय शुरू हुआ, उदीरना शुरू हो गया, तो एक समय के लिए अंतर पड़ा। और उत्कृष्ट काल दो का अनंत काल है, यानी पुरुष वेद और स्त्री वेद का अंतर काल अनंत काल है, क्योंकि एक केंद्र में गया तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक नपुसक वेद का ही उदय उदीर्णा हो गया। नपुसक वेद का अंतर कितना होता है, तो सौ सागर पृथक, उसमें ऐसा नहीं कहा कि स्त्री वेद और पुरुष वेद का मिलकर काल, ऐसा नहीं लिखा, सौ सागर पृथक तो इसका अंतर होता है, इतने अंतर के बाद वो नियम से नपुसक वेदी हो जाएगा। इसका अंतर इतना है मैक्सिमम, बीच में स्त्री होगा पुरुष होगा उसकी बात नहीं है, इसका अंतर इतना है, इतने हाँ पॉसिबिलिटी, अकेले पुरुष में रहेगा तो भी इतना काल घटित हो सकता है, विशेषार्थ तो हमने अभी सोच ही लिया था, अभी आदेश से हम देख लेंगे। ये जो जघन्य का अंतर है वो गतियों में देखेंगे। नारकियों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य और अजघन्य अनुभाग करना, जनुभाग हुआ, जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण और अंतर्मूर्त है। अजघन्य के लिए अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के लिए समय दृष्टि रहा, और जघन्य के लिए पल्य के असंख्यात वा भाग, उसका अर्थ क्या है,
प्रथम ऑप्शन,
ये प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के प्राप्ति में जब पहली स्थिति
अनुभाग
आवली प्लस एक समय बाकी रहती है तब उसकी उदीर्णा रुक जाती है। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व प्राप्ति में उस समय उसका जघन्य है। हमने ओग से जघन्य कहाँ देखा था? संयम प्राप्त करने वाला, मिथ्यात्व में से संयम प्राप्त करने वाले के अंतिम समय में देखा था। और यहाँ आवली और एक समय बाकी है तब उसकी उदीर्णा रुकेगी। उसकी बात दोनों में डिफरेंस है ना, क्योंकि वहां अंतर किया था। अंतर के कारण द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति में पहले उदीर्णा हो रही थी, अब वो रुक जाएगी, मात्र पहले स्थिति में से होगी। तो आवली छोड़कर ऊपर जितने निषेक है उसमें से उदीर्णा होती रहेगी। अब मैक्सिमम आवली प्लस एक समय बाकी है पहला स्थिति का, तो उस एक समय उस नीचे आवली में आ गया तब उसकी जो उदीर्णा होगी वो वहां पर वो जघन्य है।
या मिथ्यात्व के लिए पहले का असंख्यात्व भाग जघन्य अंतर, और अनंतानुबंधी के लिए अंतर्मूर्त देना है।
हाँ, अनंतानुबंधी की बात करेंगे, पहले हम मिथ्यात्व की बात करें। जघन्य अंतरकाल क्यों अनंतानुबंधी के अजघन्य का जघन्य अंतरकाल वो कितना होगा?
अंतर्मूर्त। वो भी अंतर्मूर्त होगा और जघन्य
तो एक समय क्यों नहीं?
हाँ, एक समय हो सकता है। यहाँ पे भी प्रथम अवसर पे, अरे चौथे गुण स्थान के सन्मुख सम्मिथ्या दृष्टि का होगा ना।
अनंतानुबंधी के जघन्य का
वो तो चौथे गुण स्थान के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का होगा, वहां पे अनंतानुबंधी में भी ये प्रथम ऑप्शन तो नहीं ले सकते ना।
प्रथम ऑप्शन हो या ना हो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो अंतर पड़ता नहीं।
चौथे गुण स्थान के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का होगा जघन्य,
बराबर है?
बराबर है। तो अंतर्मूर्त उसके लिए जघन्य अंतर बताया, पर वहां पे भी एक समय आपने बताया तो हो सकता है ना।
वो जघन्य के लिए मैंने बताया, जघन्य का अंतर नहीं पड़ेगा एक समय।
हाँ, जगन्य
एक समय में नहीं होता,
जगन्य का अंतर्मूर्त हो जाएगा।
यानी मिथ्यात्व में एक आवली प्लस समय बाकी है तभी, और अनंतानुबंधी में अंतिम समय में घटित होगा क्योंकि उसका अंतर नहीं होता है। परंतु उसका अजगन्य का जगन्य अंतर देखो, जैसे हमने ओग में देखा था, ओग में अनंतानुबंधी का देखो ना, उसमें कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इसका भी अजगन्य जगन्य अंतरकाल ओ जगन्य, देखो यहाँ लिखा ना नीचे से दूसरी लाइन में 81 पेज पर, अनंतानुबंधी के अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय।
तो जगन्य का वहां पे भी अंतर्मूर्ति,
अजगन्य का,
हाँ जगन्य का अंतर्मूर्ति लेंगे ना।
हाँ, जगन्य का तो अंतर्मूर्त हो सकता है। नहीं, जगन्य का जो है ना वेदक प्राप्त करने वाले की उतना जगन्य नहीं होगा, वो तो प्रथम ऑप्शन के ही काल में लेना है, उसका अंतर्मूर्त नहीं होगा।
तो पल्ले का संख्या
बिल्कुल, यहाँ मनुष्य में तो घटित हुआ था,
वो तो संयम,
तो संयम प्राप्त कराना था, इसलिए श्रेणी नहीं,
संयम के
संयम प्राप्त कराना। और यहाँ तो चौथे में जाने वाला है, इसलिए दोनों को लिया ना एक साथ। अजगन्य के लिए अंतर्मूर्त, ये अनंतानुबंधी के लिए एक समय उदय पलटने की अपेक्षा हो सकता है, इसमें नहीं लिखा पर ओग में लिखा था। उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागरोपम, वहां की स्थिति में शुरू में और लास्ट में देखना।
किसके लिए क्या है ये? एक तो ग्रुप है मिथ्या और अनंता मंदिर में ग्रुप हो गया, दोनों को साथ में ले रहे हैं,
दोनों को साथ में लिया और
जगन्य
हाँ। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के जघन्य के लिए पल्योपम का असंख्यात्व भाग दोनों के जघन्य का जघन्य अंतर
पल्य का असंख्यात्व हाँ।
दोनों का उत्कृष्ट जघन्य का उत्कृष्ट अंतर 33 सागरोपम कुछ कम
तैतीस
दोनों के अजघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त बताया वो तो सम्यक तो में रहने का काल बताया ना
पर अजगन्य का तो हमने एक समय
अजगन्य का एक समय हमने देखा था ओघ की अपेक्षा एक समय घटित होता है क्योंकि वो उदय पलटा उस अपेक्षा
अजगन्य का क्या बताया आपने
अजगन्य का मिथ्यात्व का तो अंतर्मूर्त होगा
अच्छा।
क्यों क्योंकि समय दृष्टि वो अंतर्मूर्त के लिए परंतु अनंतानुबंधी में क्रोध से मान हो गया एक समय में वापस आया तो अजगन्य का अंतर एक समय हो सकता है जो ओघ में हमने देखा था 81 पेज पर यहाँ पर वो नहीं लिखा है यहाँ तो सम्यक प्राप्त करने की अपेक्षा से अंतर्मूर्त बताया या अजगन्य का अंतर्मूर्त में वापस उसका ये तो मिथ्यात्व में ही होगा अंतर्मूर्त और 33 सागरोपम अनंतानुबंधी के अजगन्य का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर ठीक है वो अनुदीरक हो गया हाँ। अब आगे पढ़ेंगे सम्यक मिथ्यात्व के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागरोपम अंतर्मूर्त जैसे अन्यत्र हमने ओघ में देखा वैसे यहाँ पर भी होगा क्योंकि जो सम्यक मिथ्यात्व है उसका जघन्य उसके अंत समय में होगा चौथे में जाने वाला चौथे से फिर तीसरे में आया फिर चौथे में चढ़ेगा दोबारा जघन्य होगा अंतर्मूर्त में घटित होगा और उत्कृष्ट अंतर 33 सागर के शुरुआत में एक बार हुआ लास्ट में एक बार हुआ तो इतना अंतर होगा इसी प्रकार सम्यक्त की अपेक्षा जानना चाहिए इतनी विशेषता है इसके जघन्य अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल नहीं है अब ये बात पहले नरक में कहेंगे हम नारकी इन जनरल बात हो रही है तो जघन्य कब होगा तो कृतकृत्य वेदक के होगा एक आवली प्लस समय बाकी है तभी होगा उसका अंतर तो नहीं हो सकता पर सम्यक्त्व के अजगन्य का अंतर कितना होगा कम से कम और अधिक से अधिक सम्यक प्रकृति की उदीरणा अजगन्य हो रही है और उसका अंतर चाहिए जगन्य अंतर कैसे होगा अजगन्य का हाँ अजगन्य का जगन्य अंतर एक अंतर्मूर्त क्यों अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या तो मेरा उत्कृष्ट अंतर
कुछ कम तैतीस सागर
क्योंकि पहले सम्यक दृष्टि हुआ
मिथ्या तो हमें चला गया
तो सम्यक दृष्टि हुआ तब तक उसकी जघन्य उदीरणा चल रही थी अजघन्य फिर मिथ्या दृष्टि हुआ उदीरणा बंद रहोगे फिर लास्ट में जब पॉसिबल है अंतर्मूर्त पहले सम्यक दृष्टि हुआ दोबारा फिर मिथ्या तो में जाने वाला है उसकी बात नहीं अपनी तो फिर उदीरक हो गया इतनी बात लेनी है कुछ कम 33 सागर यानी उसको दो बार सम्यक को प्राप्त कराना एक एक बार शुरू में और लास्ट में हाँ यहाँ मैक्सिमम हाँ सातवें नरक में इसलिए तो जब इतना बीच में काल रहेगा बीच में 33 सागर कुछ कम तो वो कौन सा सम्यक को प्राप्त करेगा लास्ट में जाकर 33 सागर कुछ कम तक तो मिथ्या दृष्टि रहा तो वो कौन सा सम्यक को प्राप्त करेगा प्रथम ऑप्शन तो प्रथम ऑप्शन के बाद उसको क्या करना पड़ेगा मिथ्यात्व में जाना है सम्यक की उदीरणा होने के लिए उसको वेदक समय दृष्टि हो यानी वो प्रथम ऑप्शन हुआ वेदक समय दृष्टि हुआ तब सम्यक की उदीरणा होगी फिर बाद में वो मिथ्यात्व में आएगा उदीरणा का अंतर देख रहे हम यहाँ पर बारह कषाय है ना, तीसरी लाइन चल रही 83 पुष्प पर, बारह कषाय लास्ट में है, और चार नौ कषायों के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। जैसे यहाँ बारह कषायों में देखा, वैसे अनंतानुबंधी में जघन्य का तो हमने देखा था अंतर्मूर्त वाला, सॉरी पल्ले का असंख्यात अभाग वाला, और अजघन्य का तो अंतर्मूर्त के बदले एक समय देखा था हमने। अब यहाँ हम देख रहे हैं
चार नौकषाय,
बारह कषाय और चार नौकषाय। चार नौकषाय इसलिए कि अभी वो बात करेंगे बाद में, हास्यरति की बात अलग निकालेंगे। बारह कषाय और चार नौकषाय उनके जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय, वापस उस कषाय में आएगा तो एक समय का अंतर्गतिक होगा। ये जघन्य, अच्छा ये जघन्य का अंतर, जघन्य से अजघन्य हुआ वापस जघन्य हुआ, ये कब होगा? जघन्य और अजघन्य चलता रहेगा ना उनके लिए, ये नारकी है, अन्यत्र तो उसका अलग सवाल था। अब यहाँ नारकी में क्या देखना है, सम्यक दृष्टि हुआ तो भी बारह कषायों का उदय उदीरना तो चलती रहेगी,
विशुद्धि के साथ जघन्य हो
जाएगा, तो उसमें क्या लेना है,
विशुद्धि के साथ जघन्य हो जाएगा,
विशुद्धि के साथ जघन्य होगा, फिर अजघन्य हुआ एक समय के लिए, फिर जघन्य हुआ, ये हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागरोपम,
ये चार तो कषाय में हास्यरति का तो ले सकते हैं, बाकी बैजुगुप्सा भी क्या लेना है? नहीं,
बैजुगुप्सा में एक समय का अंतर हो सकता है,
नहीं पर 33 सागर तक नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना,
जघन्य का जघन्य किया ही नहीं उसने,
अच्छा
हाँ जघन्य का नहीं कह रहे, जघन्य का कह रहे, जघन्य का अंतर उत्कृष्ट हो सकता है, शुरू में एक बार उसने
जघन्य किया और अंत में जाके,
और क्योंकि जघन्य हर बार करेगा ऐसा कोई सवाल नहीं, अजघन्य तो चलता रहेगा,
और इनके जघन्य में भेज देंगे तो भी उसका अजघन्य ही रहेगा, जघन्य होगा ही नहीं,
हाँ
बराबर है।
अब कहते हैं अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय, एक समय के लिए उसने जघन्य किया, यहाँ तो एक समय बताया, वहां वो पलटने की अपेक्षा लगा ही नहीं है उन्होंने, बीच में जघन्य हुआ इसलिए उसको एक समय घटित किया। और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त में पलट कर तो आएगा ही आएगा, वहां क्या लिया था,
वहाँ पे तो अलग अलग बताया ना, आठ कषाय और संज्वलन का तो होता ही नहीं है, वहाँ पे इतना बताया था जघन्य का,
ओघ में अनंतानुबंधी का
नहीं, ये बारह कषाय में तो अप्रत्यक्ष प्रत्याकार और संज्वलन है ना, अनंतानुबंधी का तो बता दिया पे
एक समय किया था उन्होंने, हम आते 83 पर पढ़ रहे थे। इसी प्रकार नपुसक वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। अब नपुसक वेद का तो उदय थ्रू आउट रहेगा, उदीरणा थ्रू आउट रहेगी, बात जघन्य के और अजघन्य के अंतर की चल रही है, तो इतनी विशेषता है कि इसके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय है, यानी नपुसक वेद की उदीरणा तो थ्रू आउट चलेगी, तो अजघन्य का अंतर कब घटित होगा, जब एक या दो समय के लिए जघन्य करेगा तब, फिर वापस वो अजघन्य का अजघन्य रहेगा। और जघन्य का अंतर कितना किया, एक समय, क्योंकि एक समय के लिए अजघन्य करके वापस जघन्य हुआ,
वापस
तो एक समय हुआ, और उसका अंतर जघन्य का अंतर अधिक से अधिक कितना, तो शुरू में एक बार किया जघन्य किया, बाद में अजघन्य ही रहा थ्रू आउट, और लास्ट में जाके फिर दोबारा उसकी विशुद्धि बड़ी समय तो प्राप्त किया तो उसका फिर जघन्य हुआ। हास्य रति के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, यानी जघन्य से अजघन्य होकर फिर जघन्य हुआ तो जघन्य का अंतर हुआ, अजघन्य से जघन्य करके फिर अजघन्य हुआ तो अजघन्य का अंतर हुआ, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागरोपम। लक्ष्मी कुछ कम क्यों किया? और हास्य रति का इतना लंबा अंतर कैसे हो गया? जघन्य का भी और अजघन्य का कितना रहता है? तो पूरे 33 सागर रहता है, तो यह कुछ कम क्यों किया? हाँ मयंक भाई, इसके उदीरक का अंतर कराना है तो हास्य रति का उदय उदीरणा करानी तो चाहिए ना। पहले भी दिखाना है, लास्ट में भी दिखाना है, इसलिए कुछ कम करा। क्योंकि अंतर के लिए दो बार उदीरणा करानी है ना, और नरक में रहते हुए अगर हम ओके। अरे नहीं नहीं, ये तो कॉमन सेंस है ना। हाँ, ओग में अगर बात करते हम तो साधिक 33 सागर कहते हैं, पर नारकी रहते हुए उसको पहले एक बार हास्य थोड़ा हंसने दो ना उसको एक बार। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में, ये सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा ही घटित होगा, अन्यत्र तो अंतर्मूर्त होगा, उत्कृष्ट अंतर उसका। कसाय है वो, हम तो बाहर ही ढूंढते हैं कारण है। अब वो निमित्त रूप से हास्य रति का उदय है कहेंगे हम, उसको बाहर यथा योग्य निमित्त मिले।
अच्छा, वो पूछ लेते
अगर हम फोटोग्राफ ले तो कहते हैं कभी भी हम हास्य रति नहीं दिखाएंगे, तो कभी हास्य दिखता ही नहीं कहता, बाकी लोग देखेंगे उसके चेहरे पर देखे तो कभी हंसी दिखाई पड़ेगी। फोटोग्राफ नहीं
किसके
शेयर में तो पता नहीं, शेयर
हाँ। इतनी विशेषता है कि यहाँ सम्यक्त्व का भंग हास्य रति के समान, यहाँ इन्हें कहा सातवीं पृथ्वी, क्योंकि पहली पृथ्वी में तो जघन्य का यानी सामान्य नारकी कहो या पहली पृथ्वी कहो, जघन्य का अंतर तो होगा नहीं क्योंकि वो कृतपुष्ट वाले के होता है, परंतु नीचे के पृथ्वियों में सम्यक प्रकृति का जघन्य कब होगा?
प्रथम उपशम के काल में नहीं, सम्यक का सॉरी विशुद्धि के साथ
सम्यक दृष्टि रहते हुए जब उसकी विशुद्धि अधिक होगी, कभी भी हो सकता है वो, तो शुरू में एक बार किया लास्ट में एक बार किया तो कुछ कम 33 सागर उसका भी होगा, और कम से कम
एक समय
वहाँ उसका भी होगा, एक समय विशुद्धि कम हुई तो उसका अजघन्य हुआ, फिर वापस जघन्य हुआ। इसी प्रकार पहली से लेकर छठी पृथ्वी तक जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए, पहली के दूसरी क्या लिखना है? सम्यक्त्व का भंग ऊपर क्या लिखा? पड़मादि जाव छठी थी। अच्छा, वो आगे लिखा उन्होंने, पहली पृथ्वी में अंतर नहीं है जघन्य का, वो बाद में लिखा है। इतनी विशेषताएं कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। यहाँ हास्य रति का भंग अरति शोक के समान है। यहाँ इन्हें पहली से छठी पृथ्वी तक
एक समय से लेकर अंत तक,
और पहली पृथ्वी में सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उद्गिरक का अंतर्कार नहीं है, क्योंकि वो तो कृतकृत्य वेदक वाले के होता है। कोई भी बात करते तो थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे ना, तो इतनी विशेषताएं करके वो बात बाद में बता देते हैं। अजघन्य अनुभाग के उद्गिरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम एक सागरोपम है पहली पृथ्वी में
मिथ्यात्व में
अजघन्य का। हाँ, विशेषार्थ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध जीव के यथा समय में होती है। यथा समय में इसलिए कहा, मिथ्यात्व का तो आवली प्लस एक समय बाकी है तब, और अनंतानुबंधी का अंतिम समय। यथा प्रथम सम्यक्त्व का जघन्य अंतरकाल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग के माग हुआ। जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। शेष कथन सुगम है, जो अपने अपने स्वामित्व को जानकर ले आना चाहिए। अब तीर्यंचों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है।
अंतर्मुक्त हो जाएगा ना मिनिमम,
यानी ये पल्योपम का पल्य का असंख्या तो भाग
नहीं। तीर्यंच पे हमने पहले से पांचवे में गुण स्थान जाने के
पहले में, पहले से पांचवे में, हाँ
देव और नारकी में हमने
ओघ के समान है बरोबर, यानी वहां अंतर्मूर्त देखा।
और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पद्य ना,
इतनी विशेषता है इनके अजघन्य अनुभाग के उद्गिरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूल यानी सम्यक्त्व में रहने का काल, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम तीन पद्यों का। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, इन्हें सम्यक प्रकृति के जघन्य का अंतरकाल नहीं होगा, सम्यक के अजघन्य का अंतरकाल
एक समय नहीं, अजघन्य का अंतर्मूर्त होगा ना,
अंतर्मूर्त यानी मिथ्यात्व में रहने का काल। सम्यक मिथ्यात्व का भी हमने अंतर्मूर्त देखा था, और दोनों का जो उत्कृष्ट अंतर अगर देखना है
कुछ कम तीन,
शुरू में एक बार करना और लास्ट में फिर
कुछ कम तीन,
कुछ कम तीन पल्ले। अप्रत्याख्यान चतुष्क के जघन्य अनुभाग के उदीरक का भंग ओघ के समान है। इसका जघन्य कब होगा,
नहीं चौथे से पांचवे में जाना,
चौथे से पांचवे
में जाना, तो कुछ कम कोटि पूर्व,
लास्ट में फिर दोबारा एक बार गया
तो अंतर्मूर्त और कुछ कम कोटि पूर्व ना।
हाँ, अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। अजघन्य ऑर्डिनरी लेना, अंतर्मूर्त में वापस लौटकर अपने कषाय पर आएगा, और उत्कृष्ट अंतर करना है तो ऊपर के गुणस्थानों में भेज देना, उसका अनुदीरक कर देना। आठ कषाय और छह नौ कषाय उनके, अब इनका तो अनुदीरक होगा नहीं, वो
पांचवें गुणस्थान में सब अभिषिक्त
जघन्य अनुभाग के जघन्य हुआ, जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतर का लिख समय। देखो यहाँ जघन्य का अंतर यानी अजघन्य करेगा, यानी जो संयता संयत है जब अधिक विशुद्धि बढ़ेगी मैक्सिमम तो वो जघन्य करेगा, एक समय के लिए अजघन्य होकर के वापस जघन्य में आ सकता है, तो अंतर एक समय का होगा। जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्थ भूतगल परिवर्तन प्रमाण है, यानी बीच में फिर मिथ्या दृष्टि रहा हो तो उसने ये जघन्य किया ही नहीं इतने काल तक, क्योंकि जघन्य तो संयता संयत में आएगा तब होगा। तो अंत में अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतिम मनुष्य भव के पूर्व में
तीन भव पूर्व में लेना पड़ेगा, तीन भव पूर्व लेना पड़ेगा क्योंकि पांचवे गुण स्थान में
पांचवे गुण स्थान में क्या
होगा पांच मिनिमम
मिथ्या तो मिले जाओ मनुष्य बनाओ फिर।
अच्छा उसको वापस मिथ्या तो मिले
बाद में आयु का बंद करा हो सकता है कि नहीं।
अच्छा मैं देवी की अपेक्षा सोच रहा था देवी भी जाएगा पीछे बंद
उसको भी लास्ट अधिक से अधिक बढ़ाना है ना अंतर उसका। और जघन्य अनुभाग के उदीरक का यानी आठ कषाय और छह नौ कषाय उनके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय, एक समय के लिए उसने जघन्य किया और वापस अजघन्य हुआ और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है यानी अन्य अन्य कषाय में रह गया। इसी प्रकार स्त्रीवेद और पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए इतनी विशेषता है इनके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है। जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन यानी वो तो नपुसक वेद में रहा इतने काल तक।
ये स्त्रीवेद और पुरुष वेद में जघन्य का अंतर। अच्छा वो कोई वेद
के साथ ये तीयंच है ना।
हाँ। अच्छा पांचवें गुण स्थान में सर्व विशुद्ध को जघन्य करेगा
हाँ। उसमें जघन्य से अजघन्य होता रहेगा। इसी प्रकार नपुसक वेद की अपेक्षा जानना चाहिए इतनी विशेषता है इसके अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है।
ये स्त्रीवेद और पुरुषवेद में उत्कृष्ट अंतर कितना होगा जघन्य का? कुछ कम पूर्व कोटि लेना है ना
एक समय से लेकर
हा? कुछ कम पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर जघन्य का, क्योंकि सर्वविशिष्ट पांचवे गुण स्थान वाला को
दोनों का ही लेना ना।
हाँ दोनों का
उत्कृष्ट अंतर असंख्या पुद्गल परिवर्तन लेना ना। किसके
स्त्रीवेद और पुरुषवेद की बात कर रहा हूँ और जघन्य का नहीं जघन्य का उत्कृष्ट अंतर में पूछ रहा हूँ।
जघन्य कहो या अजघन्य कहो दोनों का उत्कृष्ट अंतर असंख्या पुद्गल परिवर्तन
नहीं जघन्य का भी पांचवे गुण स्थान में उसका जघन्य होगा तो
अच्छा,
वहाँ पे
इनमें जघन्य का अंतर देख रहे हैं। अच्छा
तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं होगा पर वहाँ पे
अजघन्य का अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगा
हाँ।
और जघन्य जब उसने पांचवे में किया उस अपेक्षा से ले रहे हैं
हाँ, तो कुछ कम पूर्व कोटि हो जाएगा ना, क्योंकि वही वेद के साथ एक बार जघन्य करेगा और
अर्ध पुद्गल वहाँ पे होगा ना।
नहीं अर्ध पुद्गल में तो वो नपुंसक पे जाएगा तो वेद बदल जाएगा, वही वेद के साथ जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कैसे होगा? अच्छा तिर्यंच सामान्य
तिर्यंच में लेना है स्त्री वेदी तिर्यंच नहीं हाँ। कहा योनिनी की बात नहीं चल रही यहाँ पर
तो उपात पुद्गल परिवर्तन
हाँ। ऊपर लिखा था ना जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन और यही बात श्रीवेद पुरुष वेद में जानना चाहिए और जघन्य के लिए उसको नपुसक वेद में भेज दिया। अब कहते हैं इसी प्रकार नपुसक वेद की अपेक्षा जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि इसके अजगण्य अनुभाग के उदीरक का जगण्य अंतरकाल एक समय है, उसने जगण्य के लिए एक समय के लिए, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यानी वो अन्य वेदों में रहा। विशेषार्थ, तीर्यंचों में आठ कषाय और नौ नौ कषायों के जगण्य अनुभाग की उदीर्णा सर्व विशुद्ध संहिता संयत के होती है, यह एक समय के अंतर से भी संभव है, इसलिए इन सबके जगण्य अनुभाग के उदीरक का जगण्य अंतरकाल एक समय कहा है, तथा संयमासंयम गुण के उत्कृष्ट अंतर को ख्याल में रखकर इन सबके अजगण्य अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। यह अनंतानुबंधी का भी
एक समय
अंतर्मूर्त लिया, या एक समय की बात उन्होंने मात्र ओघ में ली थी, ना ही नारकी में ली और ना तीरेंच में ली। अब ये हमने तीरेंच इन जनरल पढ़ लिया, अब पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिकने, पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक, ये हमारी अभी हम अपना क्राइटेरिया, उसको रहते हुए बात करेंगे। मिथ्यात्व और आठ कषायों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यह भी जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी वो वेदक समय दृष्टि ये घटित होता है वेदक के साथ पहले से पांचवे में।
आठ कषाय कौन सा लेना है?
देखो पहले हम मिथ्यात्व
और
आठ कषाय, आप ही बोलो आठ कषाय कौन सा लेना। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, क्योंकि जो पांचवे गुणस्थान में अनुदीरक रहेगा ऐसे वही होते हैं आठ कषाय। उसका अंतर चाहिए ना, देखो देखो मिथ्यात्व और आठ कषाय के जघन्य का दोनों एक साथ नहीं लेंगे, जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतर,
ये तो प्रत्याख्यान और संतुलन की बात हो रही है ना, क्योंकि अंतर्भूत में वो पलटेगा जहाँ
तो
पे वो
पांचवे पूर्व कोटि कैसे गठित करेंगे, पूरा पढ़ो ना इसको, इनका उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व किस में होगा, पंचेंद्रिय तीरेंच रहा थ्रूआउट, उसकी स्थिति काय स्थिति उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक्त्व, शुरू के भाव में उसने पांच
जगन्य की, ये जगन्य का भी बोल रहे हैं,
एक मिनट जगन्य की है ना,
जगन्य का भी होगा पांचवें गुणस्थान में मिनिमम, अरे उत्कृष्ट विश्रुति के साथ होगा
बराबर
बराबर, तो ये पर जगन्य वहां पे तो उसका उदय ही नहीं है दोनों का, अनंतानुबंधी का और उसका,
इतनी विशेषता है कि अजगन्य अनुभाग के उदीरक का भंग सामान्य तीरेंचों के समान है, लिखा है ना आगे क्या होगा अजगण्य का
एक समय,
वो आपको नहीं समझ रहा, देखो
दूसरा लिया
मैंने तो आगे का पढ़ा भी नहीं है, आठ कषाय छह नौ कषाय पूर्व कोटि पृथक का,
अच्छा क्योंकि नीचे के गुणस्थान में उसका आठ कसाई का जगन्य होगा ही नहीं, तो वो पूर्व कोटि पृथक तो संज्वलन और प्रत्याख्यान भी ऐसे ले सकते हैं कि पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, जगन्य किया, पीछे नीचे का गुणस्थान में चला गया, पूर्व कोटि पृथक काल तक रहा और अंत में जाके वापस पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया और सर्व विशुद्ध तो वहां पे अंत में हुआ।
अजगन्य का कैसा होगा उत्कृष्ट अंतर्कान पूर्व कोटि पृथक?
अजगन्य का नहीं होगा। अच्छा, मैं जगन्य की ओर से किया,
वहाँ आगे लिखा है अजगन्य अनुभाग का उदीरक का भंग सामान्य तिरंचों के समान लेना।
हाँ। तो एक समय से लेकर अंतर्मुख होगा ना।
हाँ।
तो ये जगन्य के लिए कौन सा आठ कषाय लेना?
आगे जो लिखा है आठ कषाय और छनु कषाय।
हाँ, वो अब मेरे ख्याल से अनंत अनुबंधी।
हाँ, तो पूरा पढ़ेंगे अभी। हाँ। पंचे निय तिरंच त्रिक में मिथ्याक और आठ कषायों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। इतनी विशेषता है, अजगन्य अनुभाग के उदीरक का भंग सामान्य तिरंचों के समान है। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अपनी स्थिति में कितना लेना?
पूर्व कोटि पृथक्त्व।
वो तीन पल्ले लेना कि नहीं लेना?
नहीं लेना।
क्यों नहीं लेना?
लेना पड़ेगा।
इसी प्रकार सम्यक की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता इसके जगन्य अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल नहीं है। नहीं है क्योंकि
वो तो
कृतकृत्य में होगा। फिर कहेंगे योनिनी में भी वो नहीं घटित होगा,
उसमें अंतर।
तो उसके लिए जगन्य कब होगा?
पांचवे गुण सम्यक का सर्व विश्व पांचवे गुण
पांचवे में जाने वाले।
हाँ।
पांचवे में
नहीं, पांचवे में सर्व विश्व।
पांचवे में सर्व, पांचवे में सर्व विश्व। आठ कषाय और छह नौ कषायों के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय है। एक समय के लिए अजगन्य करके वापस जगन्य हुआ और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है जगन्य के।
अच्छा, ये अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान के लिए। नहीं, क्योंकि आठ कसाई उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है। यहाँ पे तो ऐसे ले सकता है ना कि पहले भाव में उसने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया। नहीं, वो तो सोलह कसाई का नहीं, आठ कसाई का वहाँ पे उसने मिनिमम किया प्रत्याख्यान और संज्वलन का। और
प्रत्याख्यान और संज्वलन का जगन्य कब होगा?
पांचवे गुणस्थान में सर्व विशुद्ध जीव को।
हाँ।
बराबर है। तो पहले भाव में उसने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया और वहाँ पे मिनिमम,
तो ये यहाँ घटित हो रहा है। आप ऊपर घटित कर रहे थे। मैंने तो अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान कहा था
नहीं, पर वो वहाँ पे नहीं, उसका
अरे उसका जगन्य उस समय नहीं होता। उसका जगन्य तो उसका जहाँ उदय है वहाँ होगा। देखो, यहाँ अगर यहाँ पर हम अनंत अनुबंधी लेते हैं, यहाँ पर अगर अनंत अनुबंधी लेते हैं तो तीन पल्ले को यहाँ लेना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं लिया उसको, यहाँ तो पूर्व कोटि पृथक्त्व ही लेने हैं मात्र।
दोनों जगह उत्कृष्ट अंतर तो पूर्व कोटि पृथक्त्व ही
बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां पे पहले से पांचवे में जाने वाले की बात है।
हाँ।
और यहाँ पांचवे में जाने के बाद की बात है, और वहां तो जगन्य का अंतर अंतर्मूर्त लिया और यहाँ एक समय लिया।
हाँ।
एक समय कब घटित होगा? पांचवे वाले को होगा कि मिथ्या दृष्टि वाले को होगा?
पांचवे वाले
को। ख्याल में आती है ना बात? पांचवे वाले के विशुद्धि
एक समय के लिए विशुद्धि बड़ी और पीछे वापस अजगर
ये संज्वलन और प्रत्याख्यान में होगा।
हाँ,
तो नीचे आठ लिखा है वहाँ प्रत्याख्यान संज्वलन लेना है
और ऊपर
जहाँ अंतर एक समय का है और ऊपर अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान को लेना है जो मिथ्यात्व के साथ होगा उसका जगन्य। वही तो कहा था ना मैंने पहले से ही। देखो देखो
नहीं, ऊपर वाले को भी जगन्य और अजगन्य होता रहेगा, तथे यथा योग्य, तो एक समय वहाँ पे भी
अंतर्मूर्त लिया है।
नहीं, एक समय
वहाँ एक समय कैसे होगा?
चौथे गुण स्थान में जो है उसको विशुद्धि एकदम बढ़ के एक समय
नहीं होती है। उसकी विशुद्धि तब बढ़ेगी जब पांचवे के सम्मुख है।
अच्छा अच्छा, पांचवे की अपेक्षा
तो वापस चौथे में आके,
पांचवे में तो उसका उदय ही नहीं है, तो उसका तो चौथे गुण स्थान में मिनिमम होगा।
वही तो लेना, इसीलिए वहाँ पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान को ऊपर लिया, फिर घोटाला कर।
नहीं, अप्रत्याख्यान में मिनिमम एक समय होगा कि नहीं, वो मेरा क्वेश्चन है।
किसका मिनिमम?
जगन्य का और अजगन्य का, क्योंकि वहाँ पे भी
एक समय कैसे होगा? नहीं,
अप्रत्याख्यान का चौथे गुण स्थान में उदय है और वहाँ पे एक समय हो सकता है विशुद्धि और अपवा नो विशुद्धि के संकलेश के अपेक्षा।
उसका जगन्य होने के बाद उसको पांचवा गुण स्थान प्राप्त होगा। जगन्य जब अंत समय में कहते हो।
नहीं, अप्रत्याख्यान का जगन्य कहाँ पे?
चौथे के अंत समय, जब वो पांचवे के सम्मुख है, तो उसका अजगन्य का अंतर अंतर्मूर्त ही होगा ना। जगन्य हो जाएगा, पांचवे में चला जाएगा, फिर वापस चला आएगा, तब उसका या चौथे में रहते हुए एक अंतर्मूर्त में क्रोध का उदय फिर वापस आएगा, तब अंतर्मूर्त होगा, या पांचवे में जाके आने की अपेक्षा अंतर्मूर्त होगा। यानी यहाँ जो नीचे आठ कषाय लिखे हैं,
ऊपर अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यान,
हाँ वही तो बात चल रही थी। प्रत्याख्यान और संज्वलन नीचे लेना है, क्योंकि यहाँ एक समय का अंतर घटित किया और वहाँ तो अंतर्मूर्ति ही बताया, वहाँ एक समय नहीं घटित हुआ। देखो मैं फिर कहती हूँ, हम यह मिथ्यात्व और आठ कषाय ऊपर लिखे ना, वहाँ पहले हम अनंतानुबंधी के अकेले की बात करते हैं। तिर्यंचो में अनंतानुबंधी का जगन्य कब होगा? पहले गुण स्थान से जो पांचवे में जाने वाला है वैदिक समय दृष्टि, तो उसके अंतिम समय में जगन्य हुआ, वापस जगन्य होने के लिए क्या होगा? पांचवे में से फिर मिथ्यात्व में आएगा और फिर पांचवे के सम्मुख होगा, तब उसका दोबारा जगन्य होगा। एक अंतर्मूर्त में घटित हो सकता है, एक समय में तो नहीं होगा। जगन्य का अंतर एक समय वहां नहीं घटित होगा, परंतु अभी जो जीव पांचवे में गया है, अब वहां उदय उदीर्ण किसकी चल रही है? प्रत्याख्यान और संज्वलन, एक एक की बात किसी भी करेंगे, तो उसका जगन्य कब होगा? पांचवे में रहते हुए जगन्य कब होगा? जब कभी उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। एक समय के लिए अजगन्य होकर वापस वो जगन्य हो सकता है वहां पर, उसके लिए कहीं किसी सन्मुख है वगैरह ऐसी कोई बात नहीं, तो वहां अंतर एक समय घटित हो सकता है। इसीलिए उन आठ कक्षाओं में हम प्रत्याख्यान संज्वलन लेंगे और ऊपर जहां अंतर्मूर्त जगन्य अंतर घटित किया है उसके लिए पांचवे में जाके वापस पहले में आके फिर पांचवे के सन्मुख होने की आवश्यकता है। इसलिए वहां जगन्य का अंतर अंतर्मूर्त बताया और प्रत्याख्यान संज्वलन में जगन्य अंतर एक समय बताया।
अच्छा, ये मैं भूल गया था कि प्रत्याख्यान का सर्वविशुद्ध जो पांचवे के सम्मुख समय दृष्टि होगा।
पहले से पांचवे में जाने वाले का
अनंत अनुबंधी के लिए,
अनंत अप्रत्याख्यान के लिए, अप्रत्याख्यान के लिए चौथे से पांचवे में जाने, वहां भी रूल वही है ना, अंतर्मूर्त वाला। मंजू बहन कुछ ख्याल में आता है क्या? खाली सुन ले रही है, नहीं तो पूछना बीच में। अब ये आठ कषाय और छह नौ कषायों के, ये छह नौ कषायों का इसलिए कहा, पांचवे गुणस्थान वाले को इसका उदय है कि नहीं है? है, तो उसका जगन्य कब होगा? जब विशुद्ध सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम होगे तब,
एक समय हो सकता है।
तो उसमें समय का डिफरेंस था, एक समय, और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त में तो उदय पलट कर आएगा ही आएगा, इसलिए अंतर्मूर्त वहां घटे। अब इन्हीं के आठ कषाय और छह नौ कषायों के अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। क्यों? क्योंकि एक समय के लिए उसने विशुद्धि से जघन्य कर दिया और एक समय में पलट कर अजघन्य हो गया। और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त इसलिए कहा कि वापस पलट कर अपने अपने उस पर आ जाता है, यानी उसकी उदीर्णा ही नहीं होती बीच में, क्योंकि प्रतिपक्ष का उदय है। इसलिए यानी यहाँ गुणस्थान पलटने की अपेक्षा नहीं लेनी है, यहाँ प्रतिपक्षी का उदय लेना है। तीन वेदों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पुसत्व प्रमाण है। अभी इसका जघन्य अजघन्य होता रहेगा तीनों वेद का, जो कोई वेद है अपना उसका, और पांचवे गुणस्थान वाला जीव है तीर्यंच,
जघन्य हो क्या जघन्य,
तो जघन्य से अजघन्य, अजघन्य से जघन्य होगा, तो उसका जघन्य अंतर तो एक समय घटित होगा। उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक प्रमाण इसलिए लेना है कि अनुदीरक रखना, यानी अन्य वेद वालों में रखना उसको, और वापस उस वेद में आना चाहिए। तो पूर्व कोटि पृथक प्रमाण उसका अंतर लिया। इतनी विशेषता है, तिर्यंच पर्याप्तकों में स्त्री वेद नहीं है तथा योनिनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद नहीं है, तथा स्त्रीवेद के अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय है, क्योंकि दो समय के लिए उसने जघन्य कर दिया। यानी उसको उसी वेद में रखना है पूर्व कोटि पुसत्व तक, और शुरू में एक बार जघन्य करना, लास्ट में एक बार जघन्य करना। तो यहाँ तीन पल्ले लेना कि नहीं लेना?
नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं,
क्योंकि जघन्य करने के लिए पांचवें में भेजना पड़ेगा,
नहीं
तो पूर्व कोटि पुसत्व में लेना। परंतु अजघन्य का अंतर कैसे होगा? इतना
वो तो दूसरे वेद में भेज दो ना। ये कौन किसकी बात कर रहा है?
पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में।
हाँ, वो तो दूसरे वेद की अपेक्षा ही हो जाएगी।
दूसरे वेद में तिर्यंच पर्याप्त में घटित होगा।
हाँ।
दो दूसरा वेद यानी उसमें पुरुष वेद नपुसक वेद दो ऑप्शन है, परंतु जो स्त्री वेदी है
हाँ।
उसमें तो ये पूर्व घटित नहीं होगा, क्योंकि स्त्री में रहते हुए स्त्री वेद की अजघन्य उदीर्णा न हो, तब होगा दो समय के लिए मैक्सिमम। हाँ। जब उसकी जघन्य हो रही तब,
और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर
फिर से पुरुष वेद की जघन्य या अजघन्य हो रही है कहाँ होगी? तो जघन्य तो पांचवे गुणस्थान में होगी, अजघन्य कब होगी? कहीं पर भी होगी। तो पुरुष वेद का अभी हमारे पास क्या, कौन से ऑप्शन है, हमारा क्राइटेरिया क्या है? पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक, तो उसमें पहले में पहले लेते हैं पंचेंद्रिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने से पुरुष वेदी नपुसक वेदी दोनों आ गए, दोनों आते पर्याप्त होंगे। तो उसने पुरुष वेद प्राप्त किया, पांचवें गुणस्थान में गया,
जघन्य किया,
फिर वापस वो मिथ्या तो में आया, नपुसक वेद में चला गया, या उसने जघन्य किया ही नहीं बहुत काल तक, तो पूर्व कोटि पृथक हो जाएगा और अंतिम भव ने फिर उसने प्राप्त किया। ख्याल में नहीं उसका अंतर कैसे घटेगा? अजघन्य का अंतर कैसे होगा?
जघन्य प्राप्त करने की अपेक्षा,
मात्र जघन्य प्राप्त करने की अपेक्षा लेंगे तो दो ही समय हो गए। अब पर्याप्त में रहते हुए
हाँ
पर्याप्त में पहला वो अजघन्य का ले, अजघन्य का अंतर
कैसे?
नहीं, अजघन्य की बात कर रहे हैं, अजघन्य का अंतर करो अभी,
वो अलग भेद दो।
हाँ, इसीलिए पर्याप्तों में घटित होगा, क्योंकि तिर्यंश पर्याप्त तो उसको कहते हैं जो नपुसक वेदी या पुरुष वेदी है, तो वो अजगण्य उदीर्णा कर रहा था और वो अनुदीरक हुआ इन्हें पर्याप्त तो कहेंगे, अन्य वेदी नपुसक वेदी होगा, पुरुष वेदी था वो नपुसक वेदी हुआ, वापस उसको पुरुष वेदी होना है तो बीच में कितना अंतर चला जाएगा, पूर्व कोटि पुसक तो नपुसक वेद वाले के लिए पुरुष वेद में भेजना, पुरुष वेद के लिए नपुसक वेद में भेजना, परंतु योनिनी में ऐसे फैसिलिटी नहीं है। योनिनी में तो स्त्री वेद का उदय थ्रू आउट होना चाहिए, तो उसके लिए जघन्य का अंतर कब होगा, जब अजघन्य में चला जाएगा, और अजघन्य का अंतर कब होगा, जब जघन्य में चला जाएगा,
मैक्सिमम 2 समय के लिए।
तो जघन्य के लिए अंतर तो पूर्व कोटि पुसक कहेंगे, क्योंकि उसने शुरू में स्त्री के रहते हुए शुरू में एक बार जघन्य किया और लास्ट में एक बार जघन्य किया, परंतु अजघन्य का अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता। अजघन्य का अंतर तभी होगा जब एक या दो समय के लिए वो जघन्य कर रहा, ये स्त्री वेदियों में विशेषता। चल मेरी बात लिखी,
ये सर्गी सर्गी दोनों मिलके लेना है,
मिलके ले लो नहीं ले लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जघन्य के लिए फर्क पड़ेगा। जघन्य के लिए शुरू में संगी पंचेंद्रिय था, जघन्य किया, फिर स्त्री पर्याय में रहते हुए संगी असंगी के जो पूर्व कोटि पुसक प्रमाण भव है उसके अंत में जाके उसने जघन्य किया, तो उसको भूमि में भेजना कि नहीं भेजना, अंत में
नहीं
स्त्री वेदी के जघन्य करने के लिए नहीं, वहाँ पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता, यानी स्त्री वेदी के लिए जो जघन्य वो पांचवे
वाला ही भाव लेना पड़ेगा।
सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है।
ये स्त्री वेद की बात है ना?
हाँ, स्त्री वेदी में रहते इन्हीं में चली बात, क्योंकि अन्यत्र तो जघन्य का अंतर नहीं होगा, अन्यत्र ने पुरुष वेदी के लिए उसको तो पर्याप्त कहेंगे हम। स्त्री वेदी रहते हुए सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग का उदीरक कौन जीव होगा? स्त्री वेद रहते हुए मंजूबेन आप बताएंगे, सम्यक प्रकृति के जघन्य अनुभाग का उदीरक कौन सा जीव रहेगा कि जिसका अंतर एक समय घटित हो रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय किसको होता है ये पहले बताओ। वेदक समय दृष्टि का, वेदक समय दृष्टि रहते हुए सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि कहाँ होगी स्त्री वेदियों के लिए? पांचवे गुणस्थान में, जब उसकी विशुद्धि ज्यादा है तो उसने जघन्य कर दिया, एक समय के लिए अजघन्य हुआ, फिर जघन्य हुआ, एक समय का अंतर हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर उसके जितने स्त्री के भव है, स्टार्टिंग में एक बार किया उसने,
अंत में जाके पांचवा गुणस्थान,
फिर मिथ्यात्व में चला गया, क्योंकि लगातार स्त्री में रखने के लिए उसको मिथ्यात्व में भेजना कि नहीं भेजना? समय दृष्टि रहे तो वो तो स्वर्ग में चला जाएगा। तो पहले भव में पांचवे गुणस्थान में उसने जघन्य किया,
मिथ्यात्व में,
फिर मिथ्यात्व में गया, लगातार स्त्री वेदी रहा और अंतिम भव में फिर उसने जघन्य किया पांचवे में जाकर, इसलिए उसका अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक हो जाएगा। बीच में स्त्री के पर्याय चले उसके संगी असंगी के, हाल में आई बात ये, पांचवा गुण स्त्री पर्याय रहते हुए पांचवा गुणस्थान शुरू में और लास्ट में प्राप्त कराना है, और केवल पांचवा गुणस्थान नहीं उसकी सर्व विशुद्धि होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक जितना लंबा अंतर कर सकते उतना करना। अजघन्य सम्यक प्रकृति के अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, कब होगा? समय दृष्टि के रहते हुए अजघन्य से जघन्य किया एक समय के लिए, वापस अजघन्य हुआ तो एक समय का अंतर हुआ, और उत्कृष्ट अंतरकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यानी अजघन्य का उदीरक एंड रेगुलर वेदक समय दृष्टि लेना, शुरू के भाव में उसने प्राप्त किया सम्यक, फिर मिथ्यात्व में चला गया, अनुदीरक रहा, अब यहाँ तो भोगभूमि वाला ले सकते हैं ना,
भोगभूमि में
अजघन्य, हाँ भोगभूमि, यानी अपनी स्थिति इसलिए कहा यहाँ पूर्व कोटि पृथकत्व प्लस तीन पर ले लेना। अजगन्य का अंतर चल रहा
है, अजगन्य का दिखते है ना,
उसके लिए तो हमने पूर्व कोटि पृथकत्व लिया, जगन्य के अंतर के लिए पूर्व कोटि पृथकत्व, अजगन्य के लिए तीन पल्ले वाले लेना, उसमें पूर्व कोटि पृथकत्व प्लस तीन पल्ले विशेषार्थ। योनिनी तिर्यंचों में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनमें सम्यक्त्व के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण बन जाने से, पांचवें गुण स्थान में होगा उनका, विशुद्धि के काल में
नहीं
तीन से नहीं, स्त्री में लगातार आठ भव संगी के, आठ भव असंगी के, 16 भव हो जाएगी, तो शुरुआत में संगी रखना, लास्ट में संगी रखना, बीच में संगी असंगी की जो रिमेनिंग भव लेना। शेष कथन सुगम। अब पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में मिथ्यात्व और नपुसक वेद के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय है, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। यहाँ तो सारे मिथ्या दृष्टि ही है, उनके योग्य जहाँ विशुद्धि होगी तब इनकी जगन्य उदीरणा होगी, तो एक समय के अंतर से भी हो सकती है, और इस पर्याय में आने का पहला समय लास्ट समय वैसे भी ले सकते हैं, अंतर्मूर्त का अंतर होगा। अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय है, बीच में एक समय के लिए जगन्य कर दिया, और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय, लगातार जगन्य में रहने का काल है दो समय, जैसे उत्कृष्ट का दो समय देखा वैसे सर्व जगन्य में रहने का भी लगातार काल दो समय। 16 कषाय और 6-9 कषायों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। ये भी कषाय पलट जाएगा अंतर्मूर्त में, और जगन्य अजगन्य एक समय के लिए विशुद्धि के कारण अजगन्य से जगन्य हुआ, फिर वापस अजगन्य हुआ, यह उल्टा लेना। यहाँ मनुष्य त्रिक में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है, यानी मिथ्यात्व का कब होगा तो पहले से सातवें में जाने वाला वेदक समय दृष्टि है, अनंतानुबंधी को भी वहां पर ही लिया था तो अंतर्मूर्त के अंतर से वापस हो सकता है,
और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वक से
उत्कृष्ट में शुरुआत के एक भाव में और लास्ट में,
अच्छा
संयमी बनाना है ना उसको, तो पूर्व कोटि पृथकत्व का अंतर होगा, सम्यक्त्व का उसके जगन्य तो कृतकृत्य में होगा तो उसका अंतर नहीं होगा,
संयमिता तो अंतर मूर्त पूर्व कोटि पृथकत्व,
सम्यक मिथ्यात्व का भी अंतर मूर्त
पूर्व
और फिर पूर्व कोटि पृथकत्व। 8 कषायों के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व प्रमाण है। नहीं अभी अनंतानुबंधी ऊपर बता चुके, अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, क्योंकि तिर्यंचों में उसको पांचवें में ले जाना था,
यहाँ पे सातवें में,
और यहाँ तो हम संयम ही बनाएंगे उनको। इन्हें शुरू के एक भाव में गए और फिर पूर्व कोटि के अंतिम भाव में फिर उन्होंने संयम प्राप्त किया, या पांचवें में गया जो यथा योग्य लेना। अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है,
ये तो एक समय नहीं होगा, अजगन्य का जगन्य होगा एक समय के लिए,
अजगन्य का जगन्य अंतर ये उन्होंने मात्र अनंतानुबंधी में वहां घटित किया, बाकी कहीं पर एक समय लिया नहीं उन्होंने, वह जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। क्योंकि उनका जघन्य कब होता है? अंतिम समय में होता है, इसलिए यहाँ एक समय घटित नहीं होगा। यहाँ उदय की अपेक्षा कहीं एक समय वाले लीन है जो हम कह रहे हैं वहां पर। वहां पर भी उन्होंने वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ही लिया है, परंतु ओग में अनंत अनुबंधी का एक समय क्यों घटित किया था?
नहीं, अनंत अनुबंधी का तो पलटता रहेगा ना। यहाँ पे तो क्या होता है कि जगन्य कब भी होगा, अप्रत्याख्यान का तो चौथे से पांचवे,
तो अप्रत्याख्यान का अनंत अनुबंधी का भी जगन्य कब होगा? पहले से सातवें में जाने वाले का।
अच्छा, वहाँ स्वस्थान की अपेक्षा भी लिया है ना, उदय की अपेक्षा नहीं?
नहीं ना,
नहीं
तो
नहीं।
अन्यत्र कहीं नहीं ली वो अपेक्षा, एक समय वाली अपेक्षा अन्यत्र कहीं
तो
ली,
एक समय वाली अपेक्षा देखी है ना।
हाँ, 81 पृष्ठ पर हमने ओग में मात्र देखी थी उसको।
अनंतानुबंधी का अजगन्य का जगन्य अंतर एक समय होता है। 82 का लास्ट लाइन,
वो तो मैंने बताया था ना।
हाँ,
मगर वो अन्यत्र कहीं भी नहीं लिया वो अजगन्य का एक समय वाला। मैंने एक समय हमने अन्यत्र कैसे देखा जहाँ जगन्य होकर फिर अजगन्य हो सके। अनंतानुबंधी का जगन्य तो उसी के अंतिम समय में होता है ना, संयम प्राप्त करने वाले।
हाँ,
उधर ही
पहले से सातवें में जाने की अपेक्षा ही लिया था ना हमने ओग में,
तो उसका भी अंतर्मूर्त घटित होगा, पर पता नहीं कैसे एक समय लिया। यहाँ कहीं पर भी अन्य किसी कषाय का एक समय नहीं लिया। कहाँ गया? हाँ, चार संज्वलन
नहीं, यहाँ पे लिया है ना, ये जो अपने पंचेन्द्रियन पे आठ कषाय और छियान कषाय का जगन्य अनुभाग का उदीर का जगन्य अंतर का एक समय और उत्कृष्ट,
क्योंकि उसका उदय उदीरणा चल रही है।
हाँ,
तब वो तो विशुद्धि के कारण जगन्य।
अच्छा,
कर
वहाँ
सकता
पे
है
वो जगन्य होता ही नहीं,
वहाँ तो जगन्य वाला तो अंतिम समय में होता है, इसलिए एक समय वहाँ अनंत अनुबंधी में कैसे घटित किया ये प्रश्न था। एक समय फिर वापस क्रोध में आना चाहिए ना,
अंतर होने के लिए
अंतर
वापस
चाहिए ना,
वापस वो
ऊपर जाने पर अंतर उदय ही मिट गया है ऊपर जाने से। बदल वो काल घटित होगा, अंतर कैसे होगा? अंतर के लिए फिर उस कषाय में आना चाहिए ना, जगन्य के साथ आना चाहिए। उसकी चर्चा कल करेंगे हम। ये मनुष्य त्रिक का दोबारा लेते हैं आज। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतो। अश्विन भाई,
नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वर्जनम नमो लोहे सुब्बतावनम ब्रह्मोरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यनम नमो वर्जनम नमो लोहे सुब्बस्तावनम ब्रह्मोरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्य